स्थिति का अभिवास। आज हम लोग श्रीमती राधिका जी के अधिवास स्थिति को मनाने जा रहा कल हमने राधाष्टमी के दिन वो 4 बजे 5 बजे श्रीमती राधिका जी का जन्म होता है। ऐसा पुराण में उल्लेख है कि जब कृष्णचंद्र जी कुछ अनमने लग रहे बोलो वृंदा चित्त कुछ संकल हो रहा है, श्रीमती जी ने पूछा आज बड़ी तैयारी हो रही है, कहाँ की तैयारी हो रही है, चित्त चंचल किस लिए हो रहा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो जरूर कुछ बात चित्त चंचल होने का कुछ कारण जरूर होगा। मैंने कहा कि मुझे भूमंडल में जाना है जीवों को उद्धार करने के लिए, हमको जाना आवश्यक। मैं ब्रह्मा जी के एक कल्प में एक बार जाता हूं और उसके बीच में तरह तरह के उपाय करता हूं कि जो जीव हमें अनादि काल से बिछड़े हुए हैं और ये संसारिक भोगों में लगे हुए हैं, किसी प्रकार से उनको निकाल करके मैं अपने चरणों में लाना चाहता हूं। तो वो जीव ऐसे हैं बहुत ही कम घर में आते हैं। मैंने बड़ा रूप धारण किया, समस्त रूप धारण किया, सुपर रूप धारण किया, निशिंग रूप धारण किया, राम रूप मैंने धारण किया, कभी कभी कल्पी रूप भी धारण करता। इस तरह से मैं तरह तरह के रूपों को धारण करके जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करता, किंतु उससे भी अधिक नहीं आ रहे। इसलिए मैं ऐसे ब्रज की लीला को वहां तक प्रकट करूंगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं तो मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूं, याद कर सकती हूँ अब तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, जहां पर जमुना नदी नहीं है, जहां चिल्लार नहीं है, जहां हमारी चक्कियां नहीं है, जहां पर कि वृंदावन का राक्षस खड़ी नहीं है, विजुअल नहीं है, सेवा पुण्य नहीं है, बंसी बस नहीं है, जहां गोपेश्वर महादेव इत्यादि नहीं है, ईश्वर स्थल नहीं है। ठीक है, मैं ब्रह्मंडल की अर्थात गोलोक वृंदावन में अपर लीला में 84 की उसकी भूमि को मैं लेकर के चलता हूं, आप भी तैयार हो जाए अपने से। मैं आगे कितना 15 दिन आगे आऊंगा और तुम 15 दिन पीछे। वैसे तो तुम मेरी अंतरंगा शक्ति हो हमारे साथ में, किंतु लौकिक लीला में इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा ये तुम हमसे 15 दिन पीछे, नहीं तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए। यदि पत्नी बड़ी हो जाए, उम्र में बड़ी हो जाए और लंबाई में यदि अधिक लंबी हो जाए और पति छोटा हो जाए तो देखने में ये कड़वा लगता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप 15 दिन पीछे, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी में आए अभी 15 दिन हो गया, उससे कितने दिन पहले बलदेव जी 8 दिन पहले, ये महीना आप बहुत अद्भुत है। जो अभी चल रहा है। पहले बलदेव जी आते हैं इसलिए संधि शक्ति के संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री जो है, बिना बलदेव जी के कोई स्थान नहीं होता, इसलिए क्षेत्र को बनाने के लिए बलदेव प्रश्न किया। और उसी के बाद उसके पहले हुआ झूलन, सावन महीने में झूलन, राधा और कृष्ण के देवों में झूलते हैं। इसके बाद आया पूर्णिमा, बलदेव प्रभु का आविर्भाव, और उसके बाद में कृष्ण की जन्माष्टमी आई, और जन्माष्टमी के 15 दिन के ये राधा एक सूत्र में ये सब होते हैं। इसके बाद ही कुछ दिनों के बाद ही में कार्तिक महीना आया, उसमें स्वयं उज्जेश्वरी आई, उज्जेश्वरी मैंने किया श्रीमती राधिका स्वयं, उस महीने की अधिष्ठात्री कृष्ण पुरुषोत्तम महीने के अधिष्ठात्री देवता है, और ये उज्जेश्वरी पूजा का महीना जो है शक्ति को संचार करने के लिए वो उज्जेश्वरी के रूप में आती है। जो कृष्ण में भी शक्ति को आनंद को उत्साह को स्पर्शित करती है, इसलिए उनका नाम है उज्जेश्वरी। इस तरह से ये महीने बहुत सुंदर सरल है। तो कल पहले 15 दिन पहले कृष्ण का आविर्भाव हुआ, और फिर 15 दिन के बाद में राधा जी आविर्भूत हुई। उनके आविर्भूत होने की दो बातें, दो कथाएं मिलती हैं, उपाख्यान मिलते हैं, ब्रह्मांड पुराण में और दूसरे पुराण में। अधिकांश रूप में यह देखा जाता है बरसाने से कृष्णानु बाबा और नंदगांव से नंद बाबा अपने अपने परिजनों को लेकर रावण में कृष्णानु महाराज और नंद बाबा आए महाबल। क्यों? देवताओं का उत्पात बढ़ गया, वृंदावन में जो केसी दैत्य को मारा, नंदगांव में बहुत उत्पात करने लगा, गायों को तंग करने लगा, लोगों को तंग करने लगा, बहुत से सब निकलने लगे, बहुत से दैत्यदानों का ये आतंक बढ़ने लगे। इसलिए नंद बाबा कृपानंद इत्यादि जी बैठक करके परामर्श करके नंदगांव को छोड़, और कृष्ण महाराज अपनी राजधानी बरसाना को छोड़ दिया, और वो चले आए राहुल जी की महाबल टोपी में। यहां जब जाते थे तो पैसे चलते थे खपड़ों में, बड़े बड़े गाड़ाओं में गाड़ियों में लाखों को भी गायों को साथ में रखते, और जहां जाते वहीं पर अपना निवास स्थान बना लेते, इसलिए वो गोपी काला था। नंद गोकुल भी है वहां भी नंदगांव में, और फिर यहां भी नंद गोकुल है, फिर छत्तीसगढ़ में नंद गोकुल है, फिर देवगढ़ जो खिलन बने वहां पर भी नंद गोकुल है, इसी तरह से कामनगढ़ में भी नंद गोकुल है। उनके साथ में भी गोपी गायों का सू सुन माने समूह, गोपियों का समूह, गोपों का समूह, वो बछड़ों का समूह, ये सब के समूह को लेकर के चलते थे, इसलिए वो गोपी का लगता है। प्रतिदिन ऋषिभानु महाराज 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाए। जब रावण में थे तो जमुना पाटी में बैठी है मंदिर के पास में, वहीं पर स्नान करते थे। स्नान करते करते एक दिन कवि के तिथि में भाद्र मास की अष्टमी में शुक्ला अष्टमी में स्नान करने वहां पर गए तो देखा कमल का बंद है, कमल खींच रहे हैं सतदल इत्यादि, और उसके ऊपर से ज्योति से निकल देख करके आगे बढ़े, देखा कि बड़ी सुंदर बालिका नंगी चिंकारी कर रही है, अपने पैरों को अंगूठों को मुख में दे रही है, कभी हाथ के अंगूठों को दे रही है, कभी खिलवाड़ करती है, कभी सिर से गाड़ी आती है, देख करके इनको बड़ा आनंद हुआ। सोने की पुतली जैसी उसको को भी नहीं था। और उसके बाद में आए अपने राजभवन में और अपनी पत्नी से पिता जी से बोली, हम लोग को एक बेटा है उसका नाम है सीधा, दूसरी कोई बेटी नहीं, भगवान ने अनुग्रह करके हमें एक सुंदर बेटी दी, तुम अपनी गोदी में ले लो और उसको अपनी पुत्री मान लो। उन्होंने गोदी में ली, बड़ी सुंदर लड़की देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। जरा देखो अपने दल वालों को जरा कहो तो गोदी में दे दिया और उन्होंने गोदी में लेकर के अब तक उनका स्तन का दूध टूट गया था, क्योंकि बचाने का तीन चार वर्ष हो गए थे, पांच वर्ष, किंतु जो ही गोदी में दिया तो उन्हें स्तन में दिखा दिया और एक संघर्ष करके देखने लगा, बेटी को अपना स्तन दे दिया। इस प्रकार से अपनी बेटी मानने लगी। छठा दिन हुआ, पंद्रह दिन के कृष्ण का जन्म जब हुआ तो पंद्रह दिन के बाद में नंद बाबा के घर पर नारद जी आए, बोले आपको कोई संतान है या कहा देखने के लिए गए, उसको आशीर्वाद दिया, उसका ये सब देखा, हरक शोक देखा और देख करके उनको आशीर्वाद दिया, कहा बहुत ही सुंदर सुनना लड़का, बहुत प्रभावशाली होगा, तुम्हारे वंश का नाम समस्त जगह में फैल जाए। इसके बाद नाम देखा कि ये तो कृष्ण स्वयं है, इनकी खिलाड़ी शक्ति भी जरूर कहीं होगी। ढूंढते 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 चले, चारों तरफ में ढूंढते हुए देखा कि इनके मित्र हैं, बस विष्णु महाराज ये अभी रावल में है, उनके यहाँ जाए। वहां पर जाकर के उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमको एक संतान सुधरी है, ये बालक, बालक को देख करके बोले जैसे और कुछ है, ये तो बड़ा मालूम होता है अभी की उम्र का, अरे दस पांच दिन के अंदर में कुछ हुआ लड़की या लड़का हुआ नहीं, यहाँ एक लड़की अगर दिखाओ को, तो देखते हैं नारद जी एकदम समझ गए। उनको कहा कि थोड़ा सा दुर्गा घास ले आओ, पान के पत्ते लाओ, सुपारी लाओ, अच्छा तो रोही, ये सब चीजें लाओ, मैं ये कौन सी तिथि में छत्र में ये जन्मी है, ये सब हम देख करके इसका दुख भविष्य बतलाएंगे। बड़े प्रसन्न हुए, वो लाने के लिए गए और कितने में ये सौ सूची राधिका जी की खिलाफ में सत्यू का था, सौ सूची करते करते अपने शक्तियों के समेत राधा जी आदि पूछी, परम किशोरी राधिका जी का रूप लाए या कृष्ण का किशोर देख करके, तो वो सौ कुछ करते हुए समाधि में लगे हुए थे। इतने में राधा जी की सहेलियों ने ललिता जी चाहता इत्यादि जी ने उनको जब स्वराजर उनको देखो तो मैं तो अभी अंतर ध्यान से गया, बस आंख खोल करके देखा राधा जी को सौ कुछ का, इतने में अध्यक्ष अंतर ध्यान हो गई, सत्या भी अंतर ध्यान है, आकाश सुनी अब तुम्हारा दर्शन नहीं होगा, अब इनकी आराधना करो, आराधना करते 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 तुम तो कर। तो वही नारद कुंड में चले गए गोवर्धन में और वहां पर हजारों वर्षों तक उनकी आराधना करने लग गए। अभी तक दर्शन हुआ कि हो गया कि नहीं हो गया, अब कहीं लिखा तो नहीं है, किंतु जरूर हुआ होगा, हम लोगों के गुरु वर्ग हैं, जरूर हुआ होगा, किस रूप में हुआ होगा, कैसे हो रहे हैं, अब कहीं उल्लेख अभी आप लोग हैं
भागवत में तो है, दर्शन हम जाते
हैं, दर्शन देते हैं तो और भी पुराण में इस प्रकार का उल्लेख है, शंकर जी और ब्रह्मा जी दोनों आराधना कर रहे थे। शंकर जी आराधना कर रहे हैं, मैं ऐसी कोई चीज बन जाऊं पहाड़ पर्वत जिस पर कृष्ण का जन्म आविर्भाव हो और उनकी सारी लीलाएं हमारे ऊपर हो, विशेष करके पौबंध लीला इत्यादि। और इधर में ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, उन लोग गुरु वर्ग है ना, तो वो कृष्ण की आराधना नहीं करते, उसके राजा जी की आराधना। ये आप कृपा करके हमारे ऊपर में आपके लीलाएं हूं, इसलिए राजा जी ने आशीर्वाद दिया, ये अच्छी बात है, ठीक है, हमारे ऊपर में हमारी लीलाएं हूं, जन्म भी होगा। और इधर में नंदीश्वर को, नंदीश्वर माने नंदी के ईश्वर, नंदी कौन, शंकर जी के वाहन, उनके जो ईश्वर है वो नंदीश्वर, तो उनको आराधना से प्रसन्न होकर के कृष्ण गए, था हमारा जन्म या हमारी लीलाएं। इसलिए ब्रह्म पर्वत पर ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत बने और नंदीश्वर पर्वत नंदगांव में इसके ऊपर में कृष्ण की लीलाएं हुई, वहां पर उन राधा जी की लीलाएं हुई। उसी जगह में एक बृहत भानु नाम का पहले उसका नाम का केवल भानु उस ग्राम का नाम पीछे से वहां पर करता है उस भानु, उन्हीं के नाम के अनुसार उस गांव का नाम था और वहीं पर एक सरोवर था, जिस भानु महाराज रोज उसमें स्नान करते थे, इसलिए उसका नाम हुआ उस भानु सुंदर या जिस भानु खोटर भानु भानु या पृथ्वी सुंदर। वहीं पर से लोग स्नान करने जाते और ब्रह्म लोक में वहीं पर स्नान करते थे, राधिका जी सप्तल के ऊपर लिखते थे। ये दूसरा हुआ और तीसरा हुआ पुस्तिका के गर्भ रत्न से निकली है, पुस्तिका के गर्भ से निकली, जैसे यशोदा जी के गर्भ से कृष्ण निकलते हैं और जन्म लीला दिखलाते हैं, उसी प्रकार से पुष्का जी के पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण किया, इसके लिए सभी चीजें जो है कल्प भी गहरी कथा स्वभाव, कल्पों से भी किसी कल्प में किस रूप में किसी रूप में कल्प वो इस प्रकार से लीलाएं करते हैं, जन्म के एक समान ही नहीं होता, कोई जरूरी नहीं, इसे उनके गर्भ से भी निकल सकती है, वर्तमान में भी जन्म हो सकता है, किंतु अधिकांश रूप में उनका जन्म राहुल का ही उल्लेख है, इस तरह से उनका मापन कर। पुराणों में विशेष करके उपनिषदों में राधा उपनिषद लिए थे, राधा उपनिषद में भी उनके उनका उल्लेख मिलता है। लोग कहते हैं कि अभी 300-400 वर्ष पहले राधा का उल्लेख मिलता है, ये सब मूर्ख लोग कहते हैं, जिनको कोई सांदर्भ ज्ञान नहीं है, ऐसा लोग वेदों से उत्पन्न होने से पहले भी राधिका जी सब समय है, नित्य काल वो है, उनका आविर्भाव और शिरोभाव जन और अप्रकट लीला, प्रकट लीला अप्रकट लीला इत्यादि, इसलिए वृंदावन बोलो नित्य स्थान है, वहां से वहां पर सब समय रहती है, इस जगत में भी नित्य काल में हम कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति उनको इसको देख सकता है। कोई कहते हैं कि 18वीं 14वीं सदी में, कोई कहते हैं 7वीं सदी में, क्रम विकास संसार में राधा जी का पुराण में क्रम विकास है, ये सब उपहास के पिता की है। आधुनिक इतिहास आधुनिक साहित्य पढ़ने से लोगों का लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, न कृष्ण को समझते हैं न राधा जी को, न कोई भगवत तत्व को समझते हैं, एकदम पक्के नास्तिक होते हैं, विशेष करके साहित्यिक लोग जितने होते हैं अधिकांश बहुत ही कम, और ऐतिहासिक लोग ये दोनों नास्तिक होते हैं, इनके बच्चों को नहीं देना चाहिए। हम पुराणों से राधा जी के तत्व के संबंध में थोड़ा सा संस्कृत बहुत कम है तो भी मैं इसका अनुवाद हिंदी में बतलाता हूँ। ओम अथो उत्तम किम ऋषय सन काव्या भगवंत हिरण्य गर्भम उपासित देव का परम देव। किसी से मैंने उठ मंथिन ऋषि दो उत्थरेता उत्थरेता किसको कहते हैं अखंड ब्रह्मचर्यवाद अखंड ब्रह्मचर्यवाद हनुमान जी उत्थरेता ऐसे ऋषि मत्यों में भी उत्थरेता समतादि समतादि कहते हैं नित्य काल ब्रह्मचर्य रहने वाले अखंड ब्रह्मचर्यवाद। विवाह नहीं करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। विवाह नहीं किया वही ब्रह्मचारी हो गया ब्रह्मचर्य होकर के फिर ब्राह्मण और उत्थरेता हो गया। इसलिए सनकादि लोग जैसे लोग हैं ये लोग उत्थरेता उत्थरेता का भी कोई महत्व नहीं है तभी यहां पर कह रहे ब्रह्मचर्य को दिखना नहीं भगवत भक्ति नहीं हो तो उद्धरता इत्यादि का कुछ भी गुण नहीं है। कोई गुण न रहे केवल भगवत भक्ति रहे तो वो सब गुण रहते हैं और कोई भी गुण न रहे भक्ति रहे तो सब गुण उसमें आ जाए और यदि सभी गुण है और कृष्ण भक्ति नहीं है तो बेकार का होगा कुछ भी कोई गुण है। इसलिए गुण को और गुण बनाने की चेष्टा मत करो किसी को लाने की चेष्टा करो राधा कृष्ण के प्रति भक्ति अनन्य ममता उनके चरणों में हो बिना ममत्व के होगा नहीं इसलिए उनके ममत्व उनके चरणों में होना चाहिए। जिस प्रकार से गैया अपने बच्चों को पालने के लिए कॉलेज में नहीं एडमिट हो सब आत्मिक रूप में उनको इस प्रीति को बढ़ाने की चेष्टा करो कुछ यदि गुण है तो सब गुण आ जाएगा विद्वता भी आ जाएगी। अरे हम इन को देखो तो कोई विद्या नहीं और बड़े बड़े विश्व के बड़े बड़े विद्वान लोग नतमस्तक होते हैं तो भगवान नाम के प्रभाव भक्ति के भक्ति को लाने कितनी बार हो सकता है कि आप लोगों में से कोई काम दे दिए ब्राह्मण हुआ होगा ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और सबको मुखस्त किया होगा अपने स्वर के साथ में ओम गणेशाय स्वाहा ये भी किया होगा ओम दुर्गाय ये भी बहुत आप लोगों ने किया कई उपनिषद का पढ़ कर किंतु भक्ति नहीं होगी नहीं तो आप लोग यहां रहते नहीं यदि भक्ति होगी तो वो भगवान के पास मिलेगी इसका यही प्रमाण है। इसलिए समस्त विद्याओं में भक्ति जो विद्या है यही सबसे बड़ी है। तो ये सनक आदि ऋषि लोग ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए पूछा देव को परमा देव सबसे बड़ा देवता कौन है कावा सत्य की शक्तियां कौन है साक्षा का बड़ी ऐसी भौती थी और उन्हें सबसे तेज कौन है। सृष्टि की कारण कौन सी शक्ति है यह सुनकर के ब्रह्मा जी बोले पुत्रो सुनो अत्यंत गोपनीय बात है किसी से कहना मत अरे गहरे कोई मत को मत देना है यह विचार जो मैं बतला रहा हूं मत कहना जो स्नेही हो जिसको श्रद्धा है भगवान के प्रति जो आस्तिक हो ब्रह्मवादी हो ब्रह्मवादी में कृष्ण भक्त हो और गुरु भक्त हो गुरु भक्त माने क्या बस एक गुरु का बस उन्हीं तक सीमित रहना मत समझना। गुरु परंपरा को छोड़ करके गुरु नहीं है, सारे गुरु परंपरा को लो। हमें तो पीछे गुरु आएंगे कहां से? जो गुरु गुरु परंपरा को मानते हो उसके प्रति समर्पित हो, परम भक्तिमान हो, जो गुरु तत्व की शिक्षा देने वाले हों और शास्त्र पारंगत हों और अनुभूति संपन्न हो, विषयों से विरक्त हो, ऐसे लोगों को गुरु जो बनाने वाले हैं, जो उनसे निष्ठा है, बस किसी को देना और किसी को मत देना। यदि देगा तो तुम्हें पाप लगेगा। जैसे अनाधिकारी व्यक्ति को जिसको श्रद्धा नहीं उसको हरिनाम मत करो। यदि तुमने कहा तो तुम भजन से चुप हो जाओ। अनाधिकारी को कभी भी कृष्ण नाम मंत्र और ये सब जो गोपाल मंत्र इत्यादि है नहीं देना चाहिए, ब्रह्मचारी नहीं देना चाहिए। कृष्ण स्वरूप में भगवान हरि ही परम देव है, अब उसका देव है। कृष्ण स्वरूप में जो भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, राधा नाथ है, ये हरि ही परम देव है, हरि ही परम तत्व। वे छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण गोप गोपियों के शिष्य वृंदा देवी के द्वारा आराधित वृंदावन तुलसी और वृंदावन के अधीश्वर है, वही एकमात्र सर्वेश्वर है। उन्हीं श्रीहरि के एक दूसरे नारायण जी हैं, जो अखिल ब्रह्मांडों में अधीश्वर है। वे उन्हीं श्री कृष्ण के एक अंश, प्रकृति के भी पुरासन और नित्य है। उनकी भलाग्नि शक्ति, संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया इत्यादि बहुत सी शक्तियां हैं। इन सब में लाग्नि शक्ति जो है सबसे प्रधान और अंतरंग भुगतान है, वे ही श्रीमती राधिका। राधिका जी से जितनी भी शक्तियां हैं सबका कृष्ण इनकी आराधना करते हैं। कृष्ण आराधिका इति राधिका, कृष्णेन आराधक इति राधा, कृष्णं समाराधयति सदेति राधिका। कृष्ण को जो अच्छी तरह से सम्यक रूप से जो आराधना करती है वो राधा। राधा के अंदर कृष्णेन आराधक इति राधा और कृष्णं समाराधयति सब इति राधा। गांधारी से बहुत सुंदर है इसे उनको गांधारा भी कर अध्याय काव्य रूपा गोपो महिष्य। इसी की कोई प्रकाश, कोई अंतर, कोई कला, ये कौन है? काव्य रूपा गोपियां काव्य रूपा और प्रकाश कौन है? महिष्य और लक्ष्मी नित्य। जैन राधा जात कृष्णो रसाक्षी देहे नहीं कर क्रीड़ाक्षण विधान। जो राधा जी है वही कृष्ण है। शक्ति शक्ति मतो अभेदा, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही तत्व है। ऐसा भाई हरे सर्वेश सर्वेश्वर कृष्ण सर्वेश सर्वेश्वर है और वो क्या है? सर्वेश सर्वेश्वरी है। वे राधा और कृष्ण ये दोनों रस सागर, एक होते हुए भी क्रीड़ा के लिए दो वो हो गए हैं। राधा कृष्ण प्रणय तत्वी लाग्नि शक्ति स्नात एक आत्मा नो गोपुरा देह में दम गौ कन्या प्रगट मधुना तत्म राधाभाव ज्योति प्रदीत नौ कृष्ण। राधा जी क्या है? राधा क्या है? कृष्ण प्रणय विस्तृति माने क्या? कृष्ण के प्रणय की विकास चेतन में चेतामृत में साहस बताया गया है तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। राधा जी का जो प्रणय है वो तो महाभाव है, महाभाव के लिए करते हैं। कृष्ण राधा जी को प्रेम करते हैं, अभी बताया ना कृष्ण आराधना, इसलिए दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पाग और गायिका शक्ति में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, किंतु एक होते हुए भी दो हैं। गायिका शक्ति को आज से किसी कारण से मंत्र के द्वारा मानकर या किसी तरह से उसको अलग भी किया जा सकता है, हम बल्ब को छू सकते हैं, आप तो छू सकेंगे बिजली को मरे, इसलिए कुछ अलग अलग भी है। जैसे उदाहरण दिया कस्तूरी और उसका बंध, कस्तूरी यहां रखो, बिना कस्तूरी के गंध नहीं आएगा, कस्तूरी से ही गंध निकलता है, तो दोनों एक नहीं है। क्यों? कस्तूरी यहां रहेगी और कस्तूरी का गंध क्या करेगा, चारों तरफ फैलेगा, कस्तूरी नहीं फैलेगी, इसलिए मालूम होता है कि इसमें भेद भी है। इसलिए राधा जी है गंध और वो है कृष्ण है, कृष्ण है अग्नि, उनकी दायिका शक्ति अलग अलग नहीं किया जा सकता, किंतु विशेष विराट के लिए दोनों दो हो जाते हैं। कृष्ण के बामांग से संपूर्ता स्मृति राज कहां पर रोग बिंदा, इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण अपने ही आप इसलिए राधिका जी भगवान श्री हरि की संपूर्ण ईश्वरी संपूर्ण सनातनी विद्या जी है, इसलिए बतलाया गया प्रेमेर साथ महाभाव संपार की जा रही है। प्रेम का जो सार चीज है वो क्या है, और ये महाभाव स्वरूप राधिका जी, राधिका जी का अंग कैसे बना, कृष्ण प्रेम, वो जो उड़ती है क्या उड़ती है, क्या कई अंग प्रभाव उड़ती है, सखियों का स्नेह उसमें उद्वर्तन लगाती है, उद्वर्तन नहीं क्या ऑप्शन होता है ना, आजकल ऑप्शन शायद नहीं होता, सत्यों का जो स्नेह है और उनका ये जो क्या होता है ओली, ये क्या है, उनकी लज्जा खाती है, इसका रघुनाथ दास स्वामी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, एक प्रसंग में पाठ किया था इसका। राधा जी का सब कुछ कृष्ण प्रेम से बना है, इसी समय अंतर राज कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल राधा ही राधा जी है, उनका प्रेम ही राधा का प्रेम, कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, आत्माराम कृष्ण है, ठीक है, आत्माराम कहते हैं कृष्ण का जो शरीर है उसकी आत्मा कौन है, राधा जी उसके साथ निर्माण करने के लिए ये वेद वेदांत में इसी प्रश्न स्तुति किया करते हैं, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी कहते हैं ये संघ की कृपा होती है परमधाम के हाथ लग जाता है, राधा जी की कृपा जहां हुई परमधाम अपने आप मिल जाता है, जब ब्रह्म रूप दस का नाम कई अरावर्षित उनका सत्य सब जागृति कर रही मनन से सकती चंद्राधिकार चरण ले लूंगी, कहते हैं ब्रह्मा सू नार भीष्म इत्यादि जो बड़े बड़े हैं सुख नंदन सना सनातन इत्यादि ये बड़े बड़े ऋषि सिद्ध है, किंतु कृष्ण का दर्शन हिंदू लोग के लिए बड़ा दुर्लभ है, सत्य सत्य किंतु इतना दुर्लभ हिंदुओं के लिए होने पर भी यदि कोई राधिका जी के चरण भूमि की का स्मरण करता है कि मैं राधा जी के चरण की भूमि हो जाऊंगी, या उनका स्मरण करता है तो वो कैसे हो जाता है, राधा की शिक्षा में बुरी कृष्ण को मिलाने के लिए वो कैसी बन जाती है। ब्रह्म रूप कृष्ण का शक्ति है जो कृष्ण को सुगंध लगी और झट दर्शन दे, कोई प्रयास करने की बात नहीं। राधा को छोड़ करके जो मुख्य कृष्ण का सेवक था कृष्ण की आराधना कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो मूर्ख है, आत्मपरहित। इनके बहुत से नाम हैं, ऐसे तो उनको 1008 नामों की का वर्णन किया गया है, किंतु साधारण में राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्र आदि देवता कृष्ण के जो मंत्र हैं उनकी अधिष्ठात्री है। ये जो गोपाल मंत्र है ना, गोपीजन वल्लभाय, ये जो हर मंत्र है जो वेद पुण्य है उसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है, इसलिए इस मंत्र का जाप करने से सिद्धि होगी तो कौन बन देगा, ये राधा जी बन देगी। इसलिए सब बंध्या वृंदावन बिहारी वृंदा राध्या रमा अट एक गोपी मंडल सुजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण बल्लभा विषभानु सुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका अरण्या रुक्मिणी परमेश्वरी परस्पर परा पूर्णा पूर्णचंदा चंद्र निधानना एवं भवव्यास विनाशिनी 28 नामों का वर्णन किया। जिसका पाठ करते हैं वो जीवन मुक्त होकर के राधा कृष्ण के चरणों की सेवा को लाभ करते हैं। अथर्वेदीय राधिका स्थापनीय है, ये तो बदला राधा उपनिषद और ये राधा तापनी उपनिषद अथर्वेदीय है। इसमें इनको बतलाया किसी समय उपासनाओं के स्वरूप और लक्ष्य का विचार करते हुए ब्रह्मवेत्ताओं ने परस्पर यह विचार करना आरंभ किया कि राधिका जी की उपासना किस लिए की जाए। ब्रह्मवेत्ता लोग इस विचार में प्रवृत्त होने पर भगवान आदित्य वेदों का अधिष्ठात्र अधिष्ठाता प्रकाश में ज्ञान के रूप में अत्यंत कृपालु हुए और वैदिक ज्ञान में प्रकट हुआ। उन्होंने राधा जी की उपासना के संबंध में स्थितियों से किस प्रकार से विचार किया। स्तुतियां कहती हैं संपूर्ण देवताओं के रूप देवत्व शक्ति है वह राधिका जी का। संपूर्ण देव में सत्य आराध्य है कृष्ण, इसलिए कृष्ण का जो देवत्व है वो इसलिए राधा जी की वजह से। समस्त प्राणी राधिका जी के द्वारा अवस्थित हैं, अर्थात देवताओं से लेकर के क्षुद्र प्राणी वो सभी जीव राधिका जी के शक्ति में स्थित। क्यों? उन लोगों में संधिनी, संबित और श्लाघनी का कुछ ये कहां से आएगा, इसलिए सबको सबके लिए ये समस्त राधिका जी के शक्ति में स्थित और चेष्टा युक्त है। इसलिए हम सब स्तुतियां उन राधा जी को नमस्कार करती हैं। संपूर्ण संसार के अभिश्वास भुवन मोहन श्री कृष्ण चंद्र जी ने प्राण से भी अधिक मानते हैं। वृंदावन में स्थित स्तुतियों के इस आराध्या देवी उन वृंदावन की पालिका अधिष्ठात्री देवी राधिका जी को हम नित्य नमस्कार करते हैं। विश्व का भरण पोषण करने वाले कृष्ण चंद्र एकांत में अत्यंत प्रमात्र होकर के जिनकी पतिभूमि अपने मस्तक पर धारण कर वो कैसा दिखा वृंदावन में श्रेष्ठ देवी च नित्यम ताराधिका बंधात्री नमाम जस्या रेणु पाद यो विश्वभर्ता धर्ते मुद्दि रहसि प्रेम की। कृष्णचंद्र ये सब आराध्य हैं, सर्वेश्वर ईश्वर हैं, वह एकांत में प्रेमात्म होकर के जिनकी प्रतिध्वनि अपने मस्तक पर धारण कर हमारे रघुनाथ दास जी का अनुभूति का निष्ठा वर्णन किया जिनके प्रेम में निमग्न होने से उनके हाथ से बंसी गिर जाती है बंसी करान कविता खलितम शिखांडम भरतन चपिन तवतनम वज्र आदिशन जस्या प्रकाश भार राधिका चरण राधिका परिचराम सदार जिनके दर्शन मात्र से ही कृष्ण के हाथों से बंसी गिर जाती है बनमाला खिसक जाती है उनके वस्त्र गिर जाते हैं और वो दुखित होकर के गिर पड़ते हैं वो राधिका जी को कि सब फिदा हो हम सब रसपुर बपुर की सेवा कर सकते हैं जो कृष्ण कृष्ण की भांति उनके पक्ष में रहते हैं कृष्ण माने क्या राधा गुलाम फेरो क्या है बनवारी गुलाम फेरो उसी को यहाँ पर ये इसको सुन करके बहुत से लोग बिगड़ जाते हैं बहुत बिगड़ते हैं ऐसा कोई सुनना नहीं चाहते जो राधा जी कृष्ण से बड़ी कैसे हो जाएंगे उनके चरणों की धूल अपने सिर पर लेंगे और गुलाम खाना काम बंद कर लेते हैं तो इसे समझना चाहिए कि भक्ति का काम नहीं सुनूंगी इत्यादि ग्रंथों का हमें उन्होंने कभी और ऊपर काम नहीं किया ये समझना उनको रस के विषय में कोई ज्ञान है रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि के ग्रंथों का कभी भी उन्होंने नहीं देखा इसलिए उनको ऐसा जिनकी राजपीला देखकर के चंद्रमा एवं विभत्सा देवपत्नियों को अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा कृष्ण निरिक्त बल स्वरूपतीतम सुखवा सब कौन प्रेम निरिक्त गीतम दिव्यान कथा मरण सारा भक्त पटेल कबरा ये भागवत में दिया था वृंदावन के समस्त जड़ और जंगल भी अपने स्वरूप को भूल जाते हैं अर्थात जड़ पाषाण ये पिघल जाते हैं स्वरूप प्रभृति प्रवृत्त होने लगते हैं और जंगम स्थिर हो जाते हैं नदियां स्थिर हो जाती हैं जम जाती है पहाड़ गर्भ होने लगता है ऐसे श्रीमती राधिका राजमंडल में स्थित होकर के कृष्ण की जो सेवा कर इन राधिका जी को हम नमन करते हैं जिनके अंक में लेते हुए कृष्णचंद्र अपने शाश्वत विहार स्थान गोरोप्रसादी स्मरण रूप कर रहे हैं वो भूल जाते हैं कमलोद्भवा लक्ष्मी पार्वती जी के अंश रूपा हम समस्त शक्तियों के अधिष्ठात्री राधिका जी को हम नमन करते हैं कि ललता आदि शक्तियों के साथ में ऋषभ और गंधार आदि स्वरों से ऋषभ गंधार इत्यादि द्रुपद इत्यादि समार इत्यादि स्वरों से तार मध्य और मंद्र इन तीनों ग्रामों से अनेक मूर्छनाओं और स्वर के चढ़ाव उतराव से जाते हुए प्रेम विपुर शो करके जिन्होंने राजपीला तक में वृंदावन में एकमात्र अपनी ही शक्ति से ब्रह्म भी नीचा एक ब्रह्मा की एक रात पूरी रात का विस्तार किया उन राधिका जी को हम नमस्कार कभी कभी किसी समय सखियों के मंडल में दो भुजा वाली श्रीकृष्ण की मूर्ति बनकर स्वयं विभूत कृष्ण के वेश धारण कर और बंसी के चित्रों में राधिका जी ने स्वर से भर दिया कृष्ण के आंसू से बंसी लेकर के स्वर भर अभी जो गान किया कृष्ण वेश धारण करके किसी दिन राधिका जी ने वेणु वादन का प्रयत्न किया वे केवल बंसी चित्रों से ध्वनि ही निकल पाए इसे असंतोषित होकर के देव देव कृष्ण ने कुंद और कल्प वृक्ष के पुष्पों से माला बनाकर उनका श्रृंगार करते हुए उनको प्रसन्न किया जिनका इस उपनिषद में वर्णन किया गया राधिका जी और आनंद सिंधु कृष्णचंद्र एक ही शरीर के परस्पर नित्य सुंदर केवल लीला के लिए दो स्वरूपों में व्यक्त हैं जैसे शरीर अपनी छाया से सुदृष्ट होता है ऐसे कृष्ण के लिए नित्य संगनी राधा जी ने अतः जिस लीला के लिए परम रस रस सिंधु विग्रह दोनों रूप में शोभित हुआ जो उसको सुनता और पढ़ता है उसका जो श्रवण करता है मनन करता है वह गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करता है इस तरह से गीत जिसमें राधा जी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है आज यही पर है। कल सवेरे हम लोग 6:30 से 6:30 के पहले कीर्तन होगा। राधिका संबंधी बंगला में है, हिंदी में, बंगला में भी विशेष है तो तुम बात कर लेना आज, और इसके बाद में 100 छुट्टियां होंगी राधा जी।
मंगल उज्ज्वल दिशा, मंगल उज्ज्वल दिशा उज्ज्वल दिशा मने राधा कृष्ण के अत्यंत उज्ज्वल जो रथ है। कौन उज्ज्वल रथ है? जिसको कीर्तन महात्म करने के लिए और उसका टीका देने के लिए आए वो उज्ज्वल नहीं है। हम लोग का तो खुला है, हमारा संप्रदाय पर खुला है, स्वयं पर खुला है।